وارثین انبیاء ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے دار الفتاح اہل سنت. ابتداء درود پاک کی ایک فضیلہ سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، شرعی رہنمائی جو صحیح طریقہ کار کے مطابق ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کیسے کرنے ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، عبادات ہیں، یا اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہمارے روزمرہ زندگی کے درپیش آنے والے مسائل، ہم ہر روز کسی نہ کسی معاملے میں تو پڑھتے ہی ہیں. عبادات کا معاملہ ہے یا لین دین کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، الغرض ہمیں قدم قدم پر شرعی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے. اس کے لیے علماء اہل سنت، مفتیان اکرام، مفتیان اہل سنت ہماری قدم قدم پر رہنمائی کرتے ہیں. اسی سلسلہ کی ایک کڑی یہ پیارا پیارا سلسلہ بھی ہے کہ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کیسے کرنے ہیں. آج ہمارے اس پروگرام میں جو مجیب مہمان ہے، مفتی جمیل صاحب ہیں. حضور مرحبا کہتے ہیں آپ کو، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، کال لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کی. جی،
میرا نام ظہیر عباس خان ہے. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کرایہ دار مالک مکان سے ایک مکان کرائے پہ لیتا ہے اور اس کا کرایہ مالک مکان 15,000 روپے بتاتا ہے اور ایڈوانس وہ 50,000 روپے لینے کا خواہش مند ہوتا ہے، تو جو کرایہ دار کرائے پہ مکان لینا چاہ رہا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو مالک مکان کو 5,00,000 روپے ایڈوانس دینے کو تیار ہوں، لیکن کرایہ شرط یہ ہے کہ کرایہ وہ 5,000 روپے لے. اس میں برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے ہاں معاشرے میں جیسے کوئی کرائے پر گھر لینا چاہتا ہے تو مالک مکان کچھ تحفظات کے پیش نظر ایڈوانس رقم رکھتا ہے.
صحیح.
تو اس میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں، کبھی کرایہ دار ایک آدھ دو مہینے اگر کرایہ نہیں دیتا.
صحیح.
اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کرایہ نہ دینے کا سلسلہ تھوڑا طویل ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو اس دوران کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کرایہ دار مکان چھوڑ کر بغیر اطلاع دیے چلا بھی جاتا ہے.
صحیح.
اب یہ جو مالک مکان ہے اس کو 3-4 مہینے کا کرایہ بھی نہیں ملا. تو اب یہ ایڈوانس کی صورت اس بنا پہ بنائی جاتی ہے.
صحیح.
کہ اگر کرایہ دار کچھ مہینوں کا کرایہ ادا نہ کرے تو کم از کم مالک مکان جو اس کو ایڈوانس رقم ملی تھی بطور قرضہ، تو وہ اس میں سے اپنے کرائے کی جتنی اماؤنٹ بنتی ہے اتنی کاٹ لے.
صحیح.
اور بقایا کرایہ دار کو واپس کر دے. تو شرعی اعتبار سے اس کی تو اجازت ہے.
صحیح.
کہ ایڈوانس دینا مالک مکان کو اور اس کے بعد اس کا مکان یا دکان رینٹ پر لیے.
صحیح.
اور جو ان دونوں کے درمیان کرایہ طے ہوا ہے اس کے مطابق یہ کرائے پر سلسلہ چلتا رہے.
صحیح.
لیکن جو سوال کے اندر صورت بیان کی گئی ہے کہ اس کے اندر 50,000 روپے مثال کے طور پہ ایڈوانس
لینا چاہ رہا ہے
ہوگا.
جی جی.
ٹھیک ہے. اور 15,000 روپے عرف عادت اور اس ایریے کے اعتبار سے اس گھر کا کرایہ بنتا ہوگا. لیکن اب یہ کرایہ دار کی طرف سے پیشکش آ رہی ہے کہ میں آپ کو 5,00,000 روپے دوں گا.
صحیح.
اب یہ جو ایڈوانس والی رقم ہوتی ہے یہ قرضہ ہوتی ہے.
صحیح.
جو مالک مکان کو اگر کرایہ دار مسلسل ہر مہینے کرایہ دیتا رہے اور جب اجارہ رینٹ کا معاملہ معاہدہ ختم ہو تو وہ اپنا ایڈوانس واپسی لے کے چلا جاتا.
صحیح.
ہے تو اب یہ جو 5,00,000 روپے ہیں یہ ہیں قرضہ.
صحیح.
اب اس قرضے کی की बिना पर, जिसको हम कहेंगे हैवी एडवांस।
सही, हैवी एडवांस।
ठीक है, अब इस हैवी एडवांस की वजह से मालिक मकान को अब किराएदार के लिए कुछ सहूलत निकालनी पड़ेगी।
सही
भाई, 5 लाख रुपए अगर ये मुझे एडवांस दे रहा है, कर्जा दे रहा है, तो मैं अगर हर महीने 15,000 ही किराया लेता रहूं, जो के नॉर्मल चलता है किराया इस इलाके में इस घर का, तो अब कर्ज की वजह से अगर वो 5,000 की तरफ आ रहा है, तो गोया 5 लाख रुपए अगर ना देता तो 15,000 रुपए किराएदार को बतौरे किराया जो तय हुआ था वो देना पड़ता। लेकिन 5 लाख एडवांस देने की वजह से किराएदार के लिए 10,000 रुपए कम करके ये किराया 5,000 रुपए पे लाया जा रहा है। तो ये मालिक मकान और किराएदार आपस में गौर कर लें, क्या मालिक मकान 15,000 से 5,000 रुपए पर जो किराया कम कर रहा है, ठीक है, 5,000 तय कर रहा है, क्या ये 50,000 रुपए एडवांस पर इतना किराया तय करता?
सही,
नहीं करता।
बिल्कुल,
ये जो 5 लाख रुपए कर्जा मिला,
सही,
इस कर्जे की वजह से ही ये 10,000 रुपए कम होकर किराया 15,000 से 5,000 रुपए पर आ रहा है।
सही।
तो हदीस मुबारका में है, कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफातन फहुवा रिबा, के हर वो कर्ज जो किसी भी तरह के नफे को अपने जिमन में ला रहा हो,
सही,
तो वो जो नफा है रिबा होता है, सूद होता है।
सूद।
तो अब यहाँ पर भी वो एक सूद वाली सूरत पाई जा रही है कि किराएदार को 15,000 रुपए मंथली किराया देने के बजाय 5 लाख रुपए कर्ज देने की बिना पर 5,000 रुपए किराया देना पड़ रहा है, 10,000 रुपए गोया उसको हर महीने देने नहीं पड़ रहे, एक तरह से इसको फायदा हो रहा है।
सही।
अगर ये 50,000 रुपए ही एडवांस देता तो 15,000 रुपए आम रूटीन के मुताबिक किराया देता रहता, लेकिन इसने चूंकि 5 लाख रुपए दिए हैं, एडवांस दिए हैं, और ये एडवांस रकम ये हमारे यहाँ पर ये कर्ज ही समझी जाती
है।
तो इस कर्ज पर ये किराएदार को ये बेनिफिट हासिल हो रहा है, क्योंकि बाहम शर्त के अल्फाज भी जैसे कि साहिल मोहतरम ने जिक्र किए हैं, तो ये शर्त लगाई जाती है कि मैं इतनी बड़ी रकम आपको एडवांस में दे रहा हूँ तो मुझे क्या फायदा मिलेगा? तो आपको ये फायदा मिलेगा कि 15,000 से मैं आपको 5,000 किराए पे ले आऊंगा, आप हर महीने 5,000 देंगे, तो हर महीने 10,000 रुपए का जो किराएदार को फायदा हासिल हो रहा है ना देने की सूरत में,
बिल्कुल,
और गोया इसके पास बच रहा है।
सही।
तो ये इसके पास सूदी सूरत है, इस तरह का हैवी डिपॉजिट रखवा कर किराए को कम कर देना ये सूद की ही एक सूरत है। एक सूद वो होता है जो देना पड़ता है,
सही,
इसी सूरत में, और एक सूद ये होता है जो एक बेनिफिट मनफात की सूरत में हासिल हो रहा है कि इसको 10,000 रुपए देने नहीं पड़ रहे, ये 10,000 रुपए ना देने की वजह वही 5 लाख रुपए कर्जा। अगर ये कर्जा ना दिया होता तो एक अलग बात थी, मिसाल के तौर पे 50,000 रुपए ही एडवांस लोग आमतौर पे लेते हैं और 15,000 रुपए किराया देते हैं, लेकिन मालिक मकान को किराएदार के हालात मामलात कारोबार इसके पेश नजर वो कहता है आप भाई 10,000 रुपए किराया देना या आप 5,000 रुपए किराया दिया करें, तो ये जो किराएदार को फायदा हासिल हो रहा है ये कर्ज की वजह से नहीं हो रहा, ये मालिक मकान की तरफ से एक अखलाकी तौर पे उसका एक नर्म रवैया है और वो एक मदद करना चाह रहा है किराएदार की, ये इस बिना पे अगर कम करता है तो हरज नहीं है, लेकिन कमी की वजह अगर कर्जे की रकम बढ़ना उसकी वजह से किराए में कमी आना, तो फिर ये कर्ज की वजह से हासिल होने वाला नफा है जो कि जायज नहीं।
अल्लाह अकबर, ये गौर कर लिया जाए कि जो हम ये तय कर रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं कि 5 लाख रुपए देंगे तो मेरा किराया जो है ये 5,000 कर दिया जाए, बड़े ही अहसन अंदाज में माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने हमें शरई रहनुमाई फरमाई है कि ये सूद की सूरत बन रही है और ये जायज नहीं है। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के गुनाहों से और ये सूद की आफात से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। जी नेक्स्ट कॉल से रहिएगा।
मैंने 4 एकड़ जमीन ठेके पे ली, उसका ठेका 1 लाख रुपए है, मैं पूछना ये है कि पहले ठेकेदार करूँ या उशर अदा करूँ, वो कितना?
यानी इन्होंने किसी से जमीन किराए पर ली है, ठेके पे लेने का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 1 साल 2 साल 6 साल 5 साल तक ये जमीन इन्होंने ले ली किराए पे,
सही,
और ये हर साल इसका किराया देते रहते हैं या हर महीने देते रहते हैं।
जी।
अब ये जो इनका सवाल है कि जो इनके जमीन से पैदावार हासिल हुई है, इस पैदावार से सबसे पहले उशूर निकाला जाएगा या जमीन जो किराए पे ली है उसका किराया अदा किया जाएगा। तो याद रखें शरई जाब्ता और उसूल। उशूर के बारे में यानी जमीन से हासिल होने वाली जो पैदावार होती है जो आमतौर पे किसान वगैरह करते हैं, तो इस फसल में इस पैदावार में सबसे पहले उशूर निकाला जाएगा।
सही।
ये जो इस फसल की तैयारी में जितना भी खर्चा हुआ है, अब इसके लिए इसके पीछे 1 लाख खर्चा हुआ, 2 लाख, 5 लाख, जितना भी खर्चा हुआ है, तो जब मजदूर किसान वगैरह लगाए जाते हैं उनको भी दिहाड़ियाँ मजदूरियाँ दी जाती हैं, या जो फ्यूल खर्च होता है वो फ्यूल, अब ये हिसाब करें इतना इस फसल की तैयारी तक इतना फ्यूल खर्च हुआ तो पहले मैं ये सब माइनस करूँगा, ऐसा नहीं है। उशूर में सबसे पहले जो पैदावार हुई है उस पैदावार का उशूर या निस्फे उशूर वो निकाला जाता है, और बकिया जो अखराजात हैं वो अब आपको अपने उशूर या निस्फे उशूर निकालने के बाद बचने वाली पैदावार से हासिल होने वाले नफे से उन अखराजात को पूरा किया जाता है। अब ये उशूर कब होता है और निस्फे उशूर कब लाजिम होता है फसल पर? उशूर का मतलब होता है जो पैदावार हुई है उस पैदावार के 10 हिस्से कर लें, उसमें से एक हिस्सा उशूर कहते हैं, 10वें हिस्से को, जिसको आप 10% भी कह सकते। तो उशूर कब होता है? जब बारिशों के जरिए से या नहर के पानी के जरिए से आपकी फसलें सैराब होती हैं, तो इस पर बनता है उशूर, यानी 10% आपको अपनी पैदावार का बतौर ज़कात निकालना होता है। और निस्फ उशूर का मतलब यह है कि आपको पानी कुएं से निकालना पड़ता है, ट्यूबवेल के जरिए से आपको अपनी ज़मीन तक पहुँचाना पड़ता है, पानी की मोटरें चलानी पड़ती हैं, अब उसके लिए आपको जनरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी पानी आपको मेहनत मुशक्कत करके हासिल करके फिर अपनी जमीन तक पहुंचाना पड़ता है। तो इस सूरत में जो पैदावार होगी उसमें निस्फे उशर लाजिम होगा। उशर का मतलब 10वां हिस्सा और निस्फे उशर का मतलब हुआ उसका भी आधा,
उसका भी आधा।
तो 10% का आधा बनता है 5%, तो 5% को हम 20वां हिस्सा भी कह सकते हैं। तो ऐसी सूरत में भी पैदावार का 5% यानी 20वां हिस्सा वो निकालना होगा।
सही। मदनी चैनल के नाज़रीन, जब भी ये सिलसिला हो कि पहले किराया देना है या उशूर निकालना है, सबसे पहले उशूर ही हम निकालेंगे। जी नेक्स्ट कॉल चलाइएगा।
सफर की नमाज, हम सफर पे जाते हैं तो कितने किलोमीटर के सफर की नमाज शुरू होती है?
जी सफर की नमाज कितने किलोमीटर का शुरू हो जाती है?
सफर की नमाज का मतलब होता है कि 4 रकत वाली जो फर्ज नमाजें हैं, जोहर, असर और ईशा, तो ये 4 रकत वाली जो फर्ज नमाजें हैं उनमें 4 के बजाय 2-2 रकत हैं फर्ज अदा करना, बकिया 3 रकत मगरिब के पूरी पड़ जाएंगे, वितर 3ों पढ़ी जाएंगी, फजर 2 होती हैं 2 ही पढ़ी जाएंगी, बकिया जो सुन्नतें हैं जोहर या असर या दीगर नमाजों में तो उनको पूरा पूरा ही पढ़ते हैं।
सही।
तो कसर यानी कमी है वो सिर्फ फर्जों में है, वो भी 4 रकत वाली नमाजों में उनको 2 पढ़ते हैं। तो अब ये कब हुक्म होगा? तो इसके लिए 2 सूरतें अवलन जहन में रख लें। एक तो ये है कि आप अपने शहर से दूसरे जिस भी शहर जाना चाहते हैं, या अपने गांव से दूसरे किसी गांव जाना चाहते हैं, या शहर से गांव या गांव से शहर जाना चाहते हैं, तो अब इन दोनों मकामात के दरमियानी फासला कितना है, यानी आपका जो शहर है उसकी आबादी ख़त्म होने के बाद दूसरा शहर जिस तरफ आप जाना चाहते हैं उसकी आबादी शुरू होने से पहले, ये दरमियानी जो डिस्टेंस है वो अगर 92 किलोमीटर अगर बनता है, तो फिर ये जो आपका दरमियानी फासला होगा, आप अपने शहर से बाहर, हुदूद से बाहर, आबादी से बाहर निकल के, अब आपको अगर जोहर पढ़नी है या असर या ईशा पढ़नी है तो आप उन फर्ज नमाजों में कसर करेंगे।
सही।
अब आप पहुंच गए दूसरे शहर,
सही,
वहां पे कसर करनी है या नहीं करनी, तो वहां हुक्म यह है कि अब आपको यह देखना है कि दूसरे जिस शहर में आप गए हैं 92 किलोमीटर या उससे ज्यादा मुसाफत तक जहां गए, वहां अगर आपको 15 दिन या 15 दिन रात से ज्यादा रुकना है, या 15 दिन रात रुकना है या उससे ज्यादा रुकना है, तो अगला जो शहर है उसमें आप होंगे मुकीम।
सही।
और अगर 15 दिन 15 रातों से कम आपको रुकना है, जैसे 1 हफ्ते के लिए गए हैं, 10 दिन के लिए गए हैं, तो आप उस दूसरे शहर में हो गए मुसाफिर।
सही।
तो जब तक आप 4 रकत वाली नमाज फर्ज अदा करेंगे अगर अकेले पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको ये कसर करनी है, यानी चार फर्ज की जगह दो फर्ज अदा करने हैं। अगर वहाँ के इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और उनके पीछे नमाज पढ़ने में कोई शरी मुजायका भी ना हो, तो फिर आप वहाँ के मुकीम इमाम के पीछे पढ़ने की सूरत में चार रकातें ही अदा करेंगे। अब वापसी जब आप आ रहे होंगे अपने शहर में, तो दोनों सूरतों में अगर ये 92 किलोमीटर से जायद सफर करके वहाँ पहुंचे, अब ये वापसी आ रहे हैं अपने शहर, तो अपने शहर की हुदूद में दाखिल होने से पहले पहले ये चार रकत वाली नमाज को दो करके पढ़ेंगे, कसर करेंगे फर्ज नमाज। और जब अपने शहर की हुदूद में दाखिल हो गए, अपनी शहर की आबादी में दाखिल हो गए, अगरचे अपने घर अपने मोहल्ले के दरमियान अभी 20-25 किलोमीटर का फासला और है, तो कराची शहर बहुत बड़ा है कि एक कोने से दूसरे कोने तक बाज जगहों से फासला 30-30, 35-35 किलोमीटर भी बन जाता है, तो इस शहर के अंदर का फासले को नहीं देखा जाएगा। जब आबादी में आ गए तो अब अपने शहर की आबादी में दाखिल होते ही अब आपको चार रकातें ही पढ़नी है, मुसाफिर वाला हुक्म खत्म हो गया।
अक्सर मुझसे ये भी आपने खैर जवाब भी दे दिया है, मेरे जान में एक सवाल भी आ रहा था कि ये सवाल भी किया जाता है कि जब आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं वतने असली की तरफ, तो रास्ते में जो अब नमाज पढ़ेंगे वो आपने कसर नहीं पढ़नी, वो आपने पूरी पढ़नी, क्योंकि अब आप अपने वतने असली की तरफ जा रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं।
ये बिल्कुल, जिसने भी अगर ऐसा मसला समझा है तो वो गलत फहमी है, और मुमकिन है कि ये अपनी खुद साख्ता एक सूरत हो कि हम बाहर जा रहे हैं तो सफर कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो सफर खत्म हो रहा है। सफर अगर से खत्म हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हुआ, खत्म उस वक्त होगा जब आप अपने शहर की आबादी में दाखिल हो जाएंगे, तो अपने शहर की आबादी में दाखिल होने से पहले पहले आपको नमाज कसर करनी है। कुतुब फिक में यही मसला मजकूर है कि मुसाफिर उस वक्त तक मुसाफिर रहता है जब तक वापसी अपने शहर की हुदूद में दाखिल ना हो जाए।
सही। अच्छा मुस्तफ, मैं एक और यहाँ पर कसर नमाज के हवाले से एक सवाल भी करूंगा, जो चार रकतों वाली नमाज है इसमें कसर की जाती है, तो अक्सर वेस्टर इल्मे दीन से नावाकफियत की वजह से होता यह है कि एक दूसरे से फिर जब दोस्त सफर पर जाते हैं तो वो इस तरह के मसाइल दरपेश आ जाते हैं, अब वो कसर तो पढ़नी है, तो बसा औकात वो फजर में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि फजर में क्या करें। एक वाकया इस तरह का हुआ भी था कि फजर में उन्होंने, एक ने कह दिया था कि कसर होगी एक रकत पढ़ेंगे, और फिर मुझसे उन्होंने राबता भी किया, तो मैंने कहा कि फजर में तो कसर नहीं होगी, तो यूं भी एक सिलसिला है वैसे।
यानी असल वही है कि उलामा से राबता ना होना
जी,
इल्मे दीन की महाफिल में शिरकत ना करना, और फिर आपस में ही एक दूसरे से मालूमात हासिल करना। अब जिससे मालूमात हासिल की जा रही होती है वो उनमें बस यूं कहें कि अंधों में काड़ा राजा, अब चार आदमियों में जो थोड़ी बहुत भी मालूमात रखता है वो कहता है तुम कुछ ना कुछ जानते हो तुम बता दो, लेकिन मामला वही है कि कुरान पाक के अंदर है फसअलू अहलत ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, कि अगर तुम्हें इल्म ना हो तो अहले इल्म से उलमा से पूछ लो। तो शरी रहनुमाई उलमा ही से लेनी चाहिए ताकि वो सही तौर पर बर वक्त सही तौर पर हसब हाल आपके आप जिस पोजिशन में है शरी हुक्म आपके बारे में क्या बनता है आपको बता सके, वरना वही होगा जो आपने मिसाल बताई है कि फजर की नमाज में भी लोगों ने अगर कसर की है तो उसका मतलब यह हुआ कि एक रकात पढ़ी तहियात में बैठ गए वो फिर सलाम फेर दिया, तो इस तरह तो नमाज ही नहीं हुई
ऐसे ही,
क्योंकि फजर की नमाज दो रकातें हैं, दो से कम नहीं है, तो इसलिए ये फजर जिन हजरात का भी ऐसा मसला हुआ, या हो सकता है मदनी चैनल के जरिए से ऐसे भी कई अफराद हो जिनकी इस्लाह हो रही हो, और अगर उन्होंने अल्लाह न करे इस तरह अपनी जिंदगी में पहले कभी किया हो कि फजर की नमाज में भी कसर कर दिया, तो उनको फिर फजर की नमाज अदा करनी होगी, दोबारा कजा करनी होगी। अब ऐसा सही सवाल है कि मगरिब में फिर ये क्या करेंगे,
मैंने भी यही सवाल किया था उनसे,
तीन रकात उसको डेढ़ तो कर ही नहीं सकते
ऐसे ही है,
तो असल वही है कि चार रकत वाली नमाजों में ही वो भी सिर्फ फर्जों में कसर होती है, और कसर का मतलब ये है कि चार रकत की बजाय दो रकत पढ़ी जाए, यानी दूसरी रकत की अत्तहियात में जब बैठेंगे तो अत्तहियात शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ मासूरा पढ़ें और उसके बाद सलाम फेर।
मुझसे एक सवाल SMS के जरिए मौसूल हुआ है कि क्या किस्तों पर चीजें लेना जायज है,
किस्तों पर इंस्टॉलमेंट के जरिए से कि हम इस चीज की जो कीमत है वो वक्फे वक्फे से आपको देंगे, यकमुश्त नहीं दे सकते, तो इसमें तो कोई हरज नहीं है, कि जिस तरह आदमी नकद सौदा कर सकता है उधार भी कर सकता है, और उधार चाहे तो टोटल कीमत यकमुश्त अदा कर दे साल छह महीने में, या उस कीमत के मतलब प्राइस के टुकड़े पे कर ले और हर हफ्ते हर महीने के हिसाब से पेमेंट करता रहे, तो इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता एक शुबा लोगों के जहन में ये आता है कि अगर हम नकद खरीदेंगे तो बाद अवकात चीज़ का रेट 1000 रुपये हमें बताया जा रहा होता है, और अगर हम उसको उधार इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं तो उसका रेट फिर 1000 के बजाय मतलब 1500 हो जाता है। तो ये जो कमी बेशी है इसमें क्या कोई शरी हरज है क्या है? तो याद रखें, एक आदमी अपनी चीज़ का रेट 1000 रुपये के बजाय 800 भी लगा सकता है, वो अपनी चीज के 1200 भी रेट लगा सकता है, इसी ना 1500 भी। नकद के अंदर रेट कुछ और हो और उधार की सूरत में कुछ और रेट तय करे, इसमें भी कोई हरज नहीं है। अलबत्ता इंस्टॉलमेंट पर सौदा होने की सूरत में ये एक शरी खराबी आम तौर पे लाजिम आती है जो लोग कर रहे होते हैं कि अगर किस लेट करेंगे तो किस लेट करने की सूरत में फिर वो जुर्माना पेनल्टी वो लागू करते हैं।
सही,
तो ये नाजायज़ है जुर्माना वसूल करना। अगर खरीदो फरोख्त के दरमियान ऐसी नाजायज़ शर्त अगर बीच में आएगी तो इससे खरीदो फरोख्त करना भी नाजायज़ होता है। लिहाजा इंस्टॉलमेंट पे जब कभी सौदा हो किस्तों पर तो लेट होने की सूरत में जुर्माने की शर्त लगाना जायज़ नहीं।
सर, एक ज़कात के हवाले से एक सवाल आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं कि मैंने जानवर रखे हुए हैं जो जकात के निसाब को नहीं पहुंचते। कहने के अगर मैं अपना कोई जानवर पाल कर सेल करता हूं तो क्या उसमें से कुछ रकम बतौर जकात या सदका या अल्लाह की राह में देनी चाहिए, और अगर देनी चाहिए तो कितनी देनी चाहिए?
जानवरों के अंदर जैसे भेड़ बकरियां तुम्बे या गाय बैल वगैरह या ऊंट होते हैं, तो इनमें हर एक जानवर की एक मखसूस मकदार है
जी।
इतनी मिकदार में होंगे तो उनके ऊपर जानवरों के अतबार से लाजिम होने वाली जकात बनती है। 5 ऊंट हों, 30 गाय हों या 40 बकरियां, तो ये निसाब है जानवरों में जकात लाजिम होने का। इसमें कुछ शराइत हैं कि वो जानवर साल का अक्सर हिस्सा जमीन पर उगने वाली घास फूस वगैरह खाकर ही गुजारा करते हों, इसके मालिक को अपने पल्ले से चारा ना खिलाना पड़ता हो, या अगर खिलाया हो तो कभी कभार खिलाया हो, साल का अक्सर हिस्सा वो खुदरो घास चरते हों, और अगर साल का अक्सर हिस्सा इन्हें मालिक को ही खिलाना पड़ता है अपने पल्ले से, तो फिर ये चराई के जानवर नहीं कहलाएंगे, इनके ऊपर वो वाली जकात नहीं होगी। अब ये है कि ये जो जानवर है ये माले तिजारत है तो फिर माले तिजारत वाली जकात होगी। मसलन अगर किसी ने जानवर खरीदे ही इस बुनियाद पे कि मैं इनको बेचूंगा, ये कारोबार बाज लोग इस तरह करते हैं कि वो जानवर जैसे मंडियों में जो जानवर होते हैं बकसरत, तो वो इसी एतबार से होते हैं कि उन्होंने जानवर परचेस किए होते हैं और उनको वो बेचते हैं, तो ये माले तिजारत है। माले तिजारत की जो अपनी शराइत पाई जाएंगी निसाब के बराबर तो उसकी जकात उसकी लाजिम होगी। तो अब जैसे ये इनका सवाल निसाब के बराबर नहीं पहुंचते तो फिर वो कितने जानवर हैं, कैसे जानवर हैं कि इनकी मालियत माले तिजारत के एतबार से भी निसाब को ना पहुंचे, कि इस वक्त माले तिजारत का जो निसाब है वो 52.5 तोला चांदी की कीमत बनती है। 52.5 तोला चांदी की कीमत तकरीबन 82,000 रुपए पाकिस्तानी बन रहे थे, तो क्या इतनी मालियत के जानवर है या इससे ज्यादा है? तो फिर ये सवाल असल में यह है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से ही अगर ये तफसीली तौर पे फोन करके या इनके शहर में अगर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है तो वहां पर तशरीफ लाएं तो बाकायदा जवाब तो यूं दिया जा सकता है। रहा मामला ये कि आप अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपने माल को खर्च करना चाहते हैं, बिल्कुल जायज है। ज़कात अगर आप पे बनती है तो ज़कात आपको निकालना हर साल, जब जब ज़कात बनती रहेगी आपको ज़कात निकालना फ़र्ज़ होगा, और अगर ज़कात नहीं भी बनती फिर भी आप सदका खैरात के तौर पे कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। ये नफली सदका नफली खैरात वगैरह का सिलसिला होगा, लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है कि आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से बिलखसूस रुजू कर।
अगर ज़कात बनती नहीं है लेकिन इतनी मालियत ही नहीं है पास, लेकिन अगर वो कुछ ना कुछ निकालता है और बतौर ज़कात देना चाहता है तो क्या ऐसा कर सकता है?
ज़कात लाजिम नहीं है तो अब ये बतौर ज़कात भी दे रहे हैं तो वो नफली ज़कात है।
सही, नफली ज़कात।
आइंदा जब कभी निसाब बनेगा और ज़कात लाजिम होगी तो ये नफली ज़कात वो असल ज़कात के कायम मुकाम नहीं होगी।
सही, वीडियो कॉल दीजिएगा।
मेरा नाम जावेद अली, मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि जिसको जनाजे की नमाज की दुआ याद ना हो तो उस जगह पे बंदा क्या पढ़ सकता है?
जी, नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं।
कब तक नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं रहेगी?
अल्लाह,
थोड़ा कोशिश करनी चाहिए हमारे मुसलमानों को। बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल जुमले दीगर जबानों को अगर हम सीख रहे होते हैं तो उनके साउंड, प्रोनाउंसिएशन, ये सब कुछ हम सीख रहे होते हैं दिन रात, मतलब कोशिश करते हैं, बिलाखिर जो मंजिल होती है, जो जहन में मकसद होता है, उसको पाने में कामयाब हो ही जाते हैं। तो नमाज जनाजा की जो दुआएं हैं, बड़ी मुख्तसर सी दुआएं याद होनी चाहिए। लेकिन अगर बिलफर्ज जब तक नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं है तो सूरह फातिहा वो दुआ की नीयत से पढ़ सकते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये पढ़ सकते हैं। कोई भी दुआएं मासूरा वो पढ़ सकते हैं। रब्बिग़फिरली, रब्बनाग़फिरली, या रब्बी जल्ली मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ये पढ़ लें। आगे रब्बिग़फिरली वली वालिदैया, वो आता है, वो पढ़ लें। तो इस तरह मैयत के लिए भी दुआए मग़फ़िरत उसके अंदर हो जाए।
दुआए मासूरा का लफ्ज आप मुफ्ती साहब इस्तेमाल फरमा रहे हैं, दुआए मासूरा क्या है, कोई खास दुआ का नाम है ये?
दुआए मासूरा ये एक इस्तेलाह है
जी।
हमारे दीन इस्लाम में एक इस्तेलाही लफ्ज है। इसका मतलब होता है वो दुआएं जो नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से की हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को सिखाई हैं, या कुरान पाक में अल्लाह के नेक बंदों की दुआएं, अंबियाए किराम की जो दुआएं जो उन्होंने अल्लाह से की हैं, वो दुआएं कुरान पाक में मजकूर हैं, तो इनको कहते हैं दुआए मासूरा। मासूरा का मतलब जो कुरान और हदीस में मनकूल हुई हैं, नकल हुई हैं, जिक्र की गई।
सुभान अल्लाह। मुसब, SMS के जरिए एक सवाल आया है, जहाँ पर आप नमाज पढ़ रहे हैं और सामने बेड है या चारपाई है, अगर अब नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, क्या ये ठीक है?
बिल्कुल गलत सोच है जिसकी भी, अगर ऐसी सोच है कि अगर सामने चारपाई है, बेड है या बिस्तर है, यानी कोई उस पर सोता है, अगर इस हवाले से अगर कोई ये ध्यान रखता है कि नमाजी के सामने कोई ऐसा बिस्तर ना लगा हो
जी,
अगर होगा तो नमाज नहीं होगी, तो ये गलत फहमी है। नमाजी के सामने अगर बेड हो, बिस्तर हो, या चारपाई हो, या सोफा, फर्नीचर कोई भी हो, तो नमाजी नमाज पढ़ सकता है। लेकिन नमाज पढ़ने में थोड़ा सा ये ख्याल करना होगा कि बेड पर कोई पेशाब आए और ये उसके सामने नमाज पढ़ रहा है, या पलंग चारपाई कोई सो रहा है और ये नमाज पढ़ रहा है, तो इस सूरत में नमाज पढ़ने में एहतियात करें। इस सोने वाले शख्स के सामने नमाज पढ़ना, इससे इसमें कराहत है। कराहत की वजह ये नहीं है कि नमाज नहीं होगी,
अच्छा,
वजह यह कि सोने वाला बाज औकात सोते सोते, बाज लोगों को बोलने की आदत होती है
जी,
तो वो सोते सोते बोल पड़े, बाज लोग हंसते हैं
जी,
सोते सोते, तो बाज लोग सोते सोते गिर गए, करवट ली तो गिर गए। तो बाज औकात सोने वाले की गफलत में ऐसे कोई काम हो जाते हैं जिसको देखकर कोई भी आदमी बे इख्तियार हंस पड़े
जी।
तो इस खदशे के पेश नजर अगर कोई शख्स सो रहा हो तो उसके उसके सामने नमाज पढ़ने में ये एहतियात करें, क्योंकि हो सकता है कि वो सोने वाला खुदी में ऐसा काम करे कि ये उसके देख कर ये हंसेगा, हंसेगा इतनी आवाज से हंसा कि अपने कान तक आवाज पहुंची, तो नमाज टूट गई।
सही,
ठीक है। तो इस एतबार से सोने वाले के सामने नमाज पढ़ने से मना किया गया है। बाकी अगर कोई पढ़ लेता है फिर भी, तो नमाज में कोई हरज इन मानों में नहीं है कि नमाज नहीं होगी, नमाज बिला शुबा हो जाती है। लेकिन अगर कोई बिस्तर पे, चारपाई पे सामने बैठा है और उसका रुख नमाजी की तरफ है, तो अब नमाज शुरू कर देना जायज नहीं है।
और
अगर इसने नमाज शुरू की थी उस वक्त उसका रुख किबले की तरफ था, सामने बैठे हुए शख्स का, और नमाज के दौरान ही वो नमाजी की तरफ मुँह करके बैठ गया, अब गुनहगार वो शख्स होगा जो नमाजी की तरफ रुख करके बैठा हो।
जी, उम्मीद है कि तसल्ली बख्श हमें जवाब मिल गया होगा। कॉल दीजिएगा।
मोहम्मद बिलाल ज़ारदारी फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। मेरे मुख्तार की बारगाह में अर्ज है कि अगर इमाम के साथ तीन रकत वाली नमाज हो और इमाम के साथ तीसरी रकत में शरीक हो तो बकाया दो रकतें कैसे मुकम्मल करें, और अगर चार रकत वाली नमाज हो तो अगर चौथी रकत में इमाम के साथ शामिल हो तो बकाया तीन रकतें कैसे मुकम्मल करें? जवाब नायक फरमाने।
मगरिब की नमाज हो या ईशा की नमाज हो, तो इसमें इनके सवाल से जाहिर है कि एक रकत मिली है, ठीक है, مغرب میں تیسری ملی ہے اور عشاء یا عصر ظہر میں چوتھی ملی
جی.
تو ابھی جب انہوں نے امام کے سلام پھیرنے پر ابھی ان کی ایک رکعت ہوئی
جی.
جب امام صاحب دونوں سلام پھیر دیں جی. تو یہ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہونے کے بعد ثنا یعنی جو سبحانک اللہم ہے یہ پڑھیں گے, تعوذ تسمیہ پڑھیں گے, سورہ فاتحہ پڑھیں گے, پھر کوئی سورت ملائیں گے. اب اس کے بعد رکوع اور سجدے کریں گے
جی.
دونوں سجدے کرنے کے بعد ان کو کھڑا نہیں ہونا, یہ بیٹھ جائیں ٹھیک ہے. ایک رکعت چونکہ امام کے ساتھ پڑھی ہے اور ایک رکعت ان کی ابھی ہو گئی اکیلے, تو یہ دو رکعتیں ہو چکی ہیں. جب دو رکعت ہو گئیں تو پھر التحیات میں بیٹھا جاتا ہے ٹھیک ہے, سادہ اولا کیا جائے گا. اب اس کے بعد مغرب کی نماز ہے, مغرب کی نماز میں یہ کھڑے ہو جائیں, اور چونکہ ان کی دو رکعتیں چھوٹی ہیں مغرب میں, پہلی اور دوسری
جی.
اور پہلی اور دوسری میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے, سورت بھی پڑھی جاتی ہے
جی.
تو یہ اپنی ایک رکعت ادا کر چکے ہیں چھوٹی ہوئی
جی.
ایک باقی رہ گئی, تو اب یہ دوسری رکعت جو پڑھیں گے اکیلے, تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیں گے
جی.
اس کے بعد التحیات میں بیٹھے ہیں, نماز کنٹینیو رکھیں, اور نماز ان کی دو رکعت اب یہ بعد میں پڑھیں گے, سلام پھیر دیں, ان کی تین رکعتیں ہو گئیں. لیکن اگر چار رکعت والی نماز پڑھنی ہے تو اس میں یہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد التحیات میں بیٹھیں, پھر کھڑے ہو جائیں
جی.
التحیات کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں, سورت بھی ملائیں
جی.
کیونکہ اس وقت جو یہ سورت رکعت پڑھ رہے ہیں یہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں میں سے دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں
جی.
تو دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھی جاتی
جی.
ہیں. تو اب یہ اسی طرح اس کو پڑھیں, اور اس کے بعد رکوع سجود کریں. کاؤنٹنگ کے اعتبار سے ان کی یہ تین رکعتیں ہو گئیں
جی.
ایک امام صاحب کے ساتھ پڑھی اور دو انہوں نے پڑھی ہیں اکیلے
اکیلے,
اور تیسری رکعت پہ بیٹھتے نہیں ہیں
جی.
تو اب یہ تیسری رکعت کے دو سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں
جی.
اور اب چاہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں, یا سورت کے چاہے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لیں, اور پھر چوتھی رکعت کو جس طرح پڑھا جاتا ہے اس طرح ادا کریں. اس طرح یہ امام کے پیچھے مغرب میں آخری رکعت پائی ہو یا چار رکعت والی نماز میں آخری رکعت پائی ہو, تو اس میں نماز بقیہ ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے.
کیا بات ہے جی, نیکسٹ کال دیجیے گا.
دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ نماز میں جو رکوع میں جاتے ہیں تب مطلب سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں, اور ایک مرتبہ مکمل پڑھ لیں گے تو رکوع ہو جائے گا, یا پھر رکوع کی حالت میں گھٹنوں تک پیر ہاتھ پہنچ جائیں گے تو رکوع صحیح ہوگا, اس کی وضاحت فرما دیں.
امام صاحب اگر رکوع میں ہیں تو امام صاحب کی اقتداء میں کوئی شخص شامل ہوتا ہے اور وہ رکوع میں جاتا ہے, تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنی ہے, وہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہے, یعنی اللہ اکبر کہے اس حالت میں کہ یہ کھڑا ہو, اور اس کے بعد دوسری تکبیر کہے وہ رکوع میں جانے کے لیے.
یہاں پر تو ایک بہت بڑی غلطی بھی عوام میں ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی تکبیر کے ساتھ وہ اللہ اکبر کہیں گے اور گھٹنوں تک ان کے ہاتھ بھی لگ جاتے ہیں.
ہاں, تو اس طرح نہیں کرنا.
اس طرح اگر کر لیا تو
اب یہ تکبیر تحریمہ جو ہے نا وہ رکوع کی حالت میں نہیں کہی جاتی, تکبیر تحریمہ کو قیام کی حالت میں ہی کہیں گے. قیام کا مطلب یہ ہے کہ اتنا جھکیں کہ گھٹنوں تک ہاتھ نہ لگیں, یہ ہے قیام. ٹھیک, تو اب یہ ہے کہ ان کو یہ کرنا ہے جیسے امام صاحب رکوع میں ہیں, تکبیر تحریمہ کہیں اللہ اکبر, اس کے بعد دوسری تکبیر کہیں رکوع میں چلے جائیں. اگر دوسری تکبیر کہنے کے بعد رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں, تو اگر ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے اور امام صاحب ابھی رکوع سے اٹھے نہیں, اب جیسے ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے امام صاحب نے رکوع سے اٹھنا شروع کیا, یعنی ان کا اور امام دونوں پر ایسا ایک لمحہ گزرا کہ جس میں امام صاحب کے بھی ہاتھ گھٹنوں پر ہیں اور مقتدی کے بھی ہاتھ گھٹنوں پہ پہنچ چکے, تو ایک لمحہ بھی اگر ایسا ملا تو یہ دونوں کی ہو گئی شرکت, مشارکت. ایک لمحہ ایسا ہوا کہ دونوں ہی رکوع میں ہیں, تو یہ مقتدی کو رکوع مل گیا. اگرچہ مقتدی نے تسبیح ہے رکوع, یعنی چاہے ایک دفعہ بھی تسبیح نہ پڑی ہو تو رکوع مل جاتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے, بسا اوقات ساقی پہ امام حضرات جو ہمارے ہیں یہ پہلے پورے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر آواز صدا دیتے ہیں سمع اللہ لمن حمید. اب مقتدی اس دوران سمجھتا ہے کہ امام صاحب ابھی رکوع میں, اور وہ رکوع میں جانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ امام صاحب پہلے ہی رکوع سے سر اٹھا کے کھڑے ہو چکے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمید, मुक्ताजी समझता है कि मुझे रुकू मिल गया, क्योंकि मैं जब घुटने हाथ पे लग गए थे उससे पहले समी अल्लाह लिमन हमीदा इमाम ने नहीं कहा, तो मेरे हाथ घुटनों पे लग गए जब मैंने तस्बीह पढ़ ली, लेकिन हाल यह है कि इमाम साहब पहले ही खड़े हो चुके हैं, तो इस तरह ये रुकू नहीं मिलेगा। यहाँ पे इमाम साहिबान को तवज्जो देनी चाहिए कि रुकू से उठते वक्त जिस वक्त वो रुकू की हालत में, यानी हमारी कमर सीधी होती है, तो जिस वक्त कमर सीधी हो अब ये रुकू के लिए उठना चाह रहे हैं, तो रुकू के लिए उठने का आगाज करते हुए ही समिया का सीन शुरू करें, समिया अल्लाहु लिमन हमीदा, हमीदा कहेंगे तो फिर ये सीधा खड़े होना। तो ये जो नकल है, हरकत है, तो यानी रुकू से क्याम की तरफ जाने का जो एक तरीका कार या जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में समी अल्लाह लिमन हमीदा कहना है। ये नहीं कि आप पहले ही रुकू से खड़े हो चुके अब समी अल्लाह लिमन हमीदा कह रहे हैं, अब तो ये सुन्नत तर्क हो गई, अब इस खड़े होने की हालत में समी अल्लाह लिमन हमीदा कहना सुन्नत नहीं है। हमारे अइमा हजरात भी अगर सुन्नतों का ख्याल रखें तो बकसरत मुक्तदियों की रकातें फौत होने से महफूज हो जाए।
मुसब, एक और सवाल कसर नमाज के हवाले से आया है। ये जो हमारे हजरात जो गाड़ियां चलाते हैं, ड्राइवर हजरात बिलखसूस, ये तबका चूंकि ये सफर पर ही रहते हैं, इनके हवाले से सवाल ये किया गया है कि ये रोजाना तकरीबन सफर पर होते हैं, तो ये नमाज किस अंदाज में पढ़ेंगे, आया कि ये पूरी पढ़ेंगे या कसर पढ़ेंगे?
अब उमूमी तौर पर जैसे कराची टू हैदराबाद
जी,
तो रूटीन वाइज बाज एक दफा चक्कर लगाते हैं आना जाना, बाजों के दो दो चक्कर लग रहे होते हैं
जी।
तो अब अगर ये कराची में रहने वाले हैं और ये हैदराबाद की तरफ पैसेंजर लेके जा रहे हैं, तो इनको पता है कि मुझे हैदराबाद से वापसी आना है, पैसेंजर छोड़ के अगले पैसेंजर कराची के लिए लेकर आने। तो अब ये जो कराची की हदूद से निकलेंगे आबादी से, अब इनके लिए कसर का हुक्म, अब दरमियान में कहीं नमाज का वक्त होता है तो ये कसर पढ़ेंगे। हैदराबाद पहुँचते हैं, वहाँ पे नमाज का वक्त होता है जोहर असर ईशा का, कसर करेंगे। ऐसी वापसी कराची की आबादी में दाखिल होने तक, क्योंकि कराची के ये रिहायशी हैं, मुकीम हैं, तो कराची की आबादी में दाखिल होने तक इन्हें होने से पहले पहले ये कसर करेंगे। लेकिन जैसे ही अपने शहर में आ गए, अपने अड्डे में आ गए कराची में ही, और वहाँ गाड़ी इन्होंने लगा दी, अब जो जोहर असर ईशा पढ़नी है तो पूरी पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये मुकीम है। तो अब अगले सफर में जब दोबारा निकलेंगे तो अपने शहर की आबादी से निकल लें, यानी फिर इनको ये देखना है कि अपने शहर से कितने किलोमीटर के मुसाफत पे जा रहे हैं। अगर इन्हें मिसाल के तौर पर कराची वाले को नूरियाबाद की कोई सवारी मिलती है, तो अब ये नूरियाबाद जाना जो होगा ये 92 किलोमीटर नहीं है, ये 92 किलोमीटर से कम बनता है, अभी 80-85 शायद इतना बनता है, तो 92 किलोमीटर से मुसाफत नूरियाबाद की कम है। तो लिहाजा नूरियाबाद जाना आना करेंगे तो फिर कराची में भी, नूरियाबाद के सफर में भी, नूरियाबाद में भी, वापसी में भी, सब पूरी पूरी पढ़ेंगे। जहाँ इनका सफर अपने शहर की आबादी से दूसरे शहर की आबादी शुरू होने के दरमियान 92 किलोमीटर की मुसाफत पर मुश्तमिल होगा, तो फिर ये इस सफर के दौरान मुसाफिर होंगे।
सही, पता चला मदनी चैनल के नाज़रीन कि जो मुसाफिर हजरात हैं, जिस अंदाज में मुफ्ती साहब ने रहनुमाई फरमाई है, वो उसी अंदाज में कसर नमाज पढ़ेंगे कि जब वो अपने शहर की आबादी से निकल गए और जहाँ पर जा रहे हैं वो 92 किलोमीटर बनता है, और वो इस दौरान फिर वो कसर नमाज अदा करेंगे। एक वीडियो कॉल है हमारे पास, जी चलाइएगा।
मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई चीज मिसाल के तौर पे हमारा जनरल स्टोर है, मुझे ये चीज 120 रुपए की आती है, मैं इसके ऊपर जायज मुनाफा क्या रख सकता हूँ जो मेरी दुनिया और आखिरत में पकड़ ना हो?
जी,
शरई जाब्ते के मुताबिक तो ऐसी कोई खास मिकदार तय नहीं है कि अगर 120 रुपए की कोई चीज खरीदी है तो अब ये 120 रुपए की खरीदी हुई चीज को कितने रुपए में बेच सकते हैं, 130 में बेचें, 140 में बेचें, ऐसी कोई शरई एतबार से हदबंदी नहीं है। जो इनके और खरीदार के दरमियान आपस में बाहमी रिजामंदी के साथ रेट तय हो जाए, जिसमें ये अपना मुनाफा भी रख लें, तो अब भले वो 200 रुपए का बेच दें, धोखा ना दें, तो इसमें कोई हरज नहीं है। अगर ये 180 रुपए की खरीदा हुआ बताते हैं और 200 रुपए में बेचते हैं जबकि 120 रुपए में खरीदा हो, तो ये जो 60 रुपए हैं ये धोखे से कमाए जा रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं होगी धोखा देने की। और बहुत सारे कारोबारी लोग इस तरह धोखा भी दे रहे होते हैं।
धोखा देने की इजाजत नहीं है। मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सिलसिला अच्छा लगा होगा। बड़ा ही मुफीद ये सिलसिला है, बड़ा फायदा मंद, हमारी कदम कदम पर शरई रहनुमाई होती है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमारा ये आज का प्रोग्राम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी खताओं से दरगुजर फरमाए। आमीन बिजाह खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि।
वारिसी ने अंबिया हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हूँ हम इनकी बारगाह।